एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग के एक ऐसे उपन्यास की जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई, द वेजिटेरियन।
हाँ, जिसका मूल कोरियाई शीर्षक है चाये शिक जुईजा, यानी शाकाहारी, जैसा आपने कहा।
बिल्कुल, हान कांग वो समकालीन कोरियाई साहित्य की एक बहुत ही अहम आवाज हैं। उनका जन्म ग्वांगजू शहर में हुआ था।
हाँ, और ग्वांगजू देखिए 1980 के दशक में काफी राजनीतिक उथल पुथल का, मानवाधिकार हनन का गवाह रहा है।
हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये पृष्ठभूमि, मतलब ये जो सामूहिक आघात हैं, जो अनकही कहानियां हैं, ये उनके लेखन को एक खास तरह की गहराई देती हैं, शायद एक बेचैनी भी।
बिल्कुल देती हैं। उनके पिता हान स्युंग वोन, वो भी जाने माने उपन्यासकार थे, पर हान कांग की शैली एकदम अलग है। उनका गद्य आप देखेंगी तो बहुत काव्यात्मक है, उसमें एक अजीब सी शांति है।
लेकिन विषय,
हाँ, लेकिन विषय अक्सर चौंकाने वाले होते हैं।
हाँ, हिंसा, मानवीय चेतना की वो सीमाएं, वो पाठक को झकझोर देते हैं।
द वेजिटेरियन तो 2007 में कोरिया में छपी थी तीन हिस्सों में, पर असली धूम तो मची 2015 में जब डेबोरा स्मिथ का अंग्रेजी अनुवाद आया।
और फिर 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, वो तो बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, वो पहली कोरियाई लेखिका थी जिन्हें ये सम्मान मिला। इसने हान कांग और मतलब पूरे कोरियाई साहित्य को ही दुनिया के सामने ला खड़ा किया।
बिल्कुल, एक ग्लोबल पहचान मिली।
तो आज हमारा इरादा है कि इस उपन्यास की परतों को धीरे धीरे खोलें, कहानी की गहराइयों में उतरें, किरदारों के मन में क्या चल रहा है उसे समझें।
और जो मुख्य विषय हैं, जो इसकी संरचना है, उस पर भी बात करें, क्योंकि ये किताब, देखिए, नाम से लगता है कि शाकाहार पर होगी, पर ये उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ, ये सिर्फ डाइटरी चॉइस की बात नहीं है, ये तो इंसानी रूह के अंधेरों की, समाज के दबावों की एक बहुत जटिल कहानी है। सही कहा, और इसकी बनावट ही इसे खास बनाती है। तीन खंड है और हर खंड एक अलग किरदार के नजरिए से कहा गया है, पति, फिर जीजा और आखिर में बहन।
दिलचस्प बात यह है कि कहानी जिसके बारे में है, योंग है, उसके अपनी आवाज, वो हमें सीधी सुनाई नहीं देती।
हाँ, वो केंद्र में है पर जैसे हाशिए पर धकेल दी गई हो। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं पर वो खुद खामोश है।
बिल्कुल, तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। पत्नी, ये विद्रोह की शुरुआत है और इसे योंगे के पति श्री चोंग के नजरिए से बताया गया है।
हाँ, तो योंगे जो कहानी की नायिका है वो सियोल में रहती है, एक बिल्कुल आम गृहिणी,
उसके पति के शब्दों में, पूरी तरह से साधारण।
एकदम साधारण, इतनी कि उसमें कुछ खास नजर ही नहीं आता। वो चुपचाप जी रही है, समाज की, परिवार की जो उम्मीदें हैं उनके बोझ तले दबी हुई सी लगती है।
लेकिन फिर एक रात सब बदल जाता है।
हाँ, एक रात उसे एक भयानक सपना आता है, बहुत ही वीभत्स, जानवरों के कटे हुए अंग, खून, मांस के लोथड़े, ये छवियां उसे जैसे अंदर तक हिला देती हैं।
और इस सपने का असर इतना गहरा होता है,
हाँ बिल्कुल,
अगली सुबह से ही वो मांस खाना बंद कर देती है पूरी तरह से। और सिर्फ खाना नहीं, वो घर से, अपने शरीर से हर वो चीज हटा देती है जो किसी जानवर से जुड़ी हो, चमड़े के जूते, ऊनी कपड़े, सब कुछ।
ये तो एक तरह का मूक विद्रोह हुआ, अपने अस्तित्व पर अपने अधिकार का पहला दावा।
बिल्कुल, लेकिन ये दावा उसके पति को बिल्कुल मंजूर नहीं, श्री चोंग। जैसा पहले खंड में पता चलता है, उसने योंगे से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो औसत थी।
हाँ, अपेक्षाकृत महत्वहीन,
मतलब ऐसी पत्नी जो उसकी जिंदगी में कोई लहर न पैदा करे, उसे चुनौती ना दे।
सही। अब योंगे का ये छोटा सा निजी फैसला उसे अपनी सत्ता पर, अपने आरामदेह जीवन पर एक हमले जैसा लगता है, एक असुविधा, एक जिद।
और यही मुझे लगता है उपन्यास उस सामाजिक ढांचे पर, उस पितृसत्ता पर उंगली रखता है जिसके खिलाफ योंगे का ये अनकहा विद्रोह है ना?
वो कोशिश करता है कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए, मांस खाने लगे, पर योंगे वो अडिग है।
मामला बिगड़ता कब है?
जब एक फैमिली डिनर होता है, वहां योंगे के पिता हैं जो थोड़े पुराने ख्यालात के हिंसक किस्म के आदमी हैं, वो जबरदस्ती उसके मुंह में मांस ठूसने की कोशिश करते हैं।
पूरा परिवार समाज का दबाव उस एक पल में सिमट आता है।
हाँ, और जब योंगे पूरी ताकत से मना करती है तो पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो हिंसा जैसे उस पूरी व्यवस्था का प्रतीक बन जाती है जो उसे कुचलना चाहती है।
और फिर वो क्षण आता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है।
हाँ, इस क्रूरता के जवाब में योंगे बहुत शांति से मेज से फल काटने वाला चाकू उठाती है और अपनी कलाई काट लेती है। खून बहने लगता है और वो बस बुदबुदाती है, मर जाना बेहतर है। ये प्रतिरोध का एक चरम रूप है, शायद आत्मघाती, पर उसकी नजर में अपनी देह पर अधिकार जताने का यही तरीका बचा था।
ये घटना उसके पुराने जीवन का अंत है, समझिए। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, उसका पति उसे छोड़ देता है।
हाँ, ये बाहरी दुनिया से, समाज की उम्मीदों से उसका पहला और बहुत हिंसक रिश्ता टूटना है।
और यहाँ ये सवाल उठता है कि समाज किसी भी अलग रास्ते को, किसी भी असहमति को पागलपन का नाम इतनी आसानी से क्यों दे देता है?
बहुत जरूरी सवाल है ये। खैर, अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। दूसरा खंड है मंगोलियाई निशान, और अब नजरिया बदलता है। कथावाचक है योंगे का जीजा,
यानी उसकी बड़ी बहन इन्हें का पति।
वो एक वीडियो आर्टिस्ट है।
हाँ, वीडियो आर्टिस्ट, और वो खुद भी अपनी कला में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक तरह का ठहराव महसूस कर रहा है।
और योंगे समय कहाँ है, कैसी है? योंगे का तलाक हो चुका है, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती है। पहले से ज्यादा चुप, दुनिया से कटी हुई, जैसे अपने ही अंदर सिमट गई हो।
और जीजा उसे योंगे में क्या दिखता है?
वो योंगे के इस विद्रोह, इस चुप्पी और उसके शरीर पर बचपन से मौजूद एक हल्के नीले हरे मंगोलियाई बर्थमार्क के प्रति, मतलब आसक्त हो जाता है, एक ऑब्सेशन पाल लेता है।
जहां पति ने इसे असुविधा माना था, जीजा उसमें कुछ और देख रहा है।
हाँ, वो उसमें एक तरह की आदिम पवित्रता देखता है, सामाजिक बंधनों से मुक्ति। उसे लगता है योंगे इंसानी शर्म, नियमों से परे चली गई है, प्रकृति के करीब।
एक मौलिक प्राणी अपनी कला के लिए एक आदर्श विषय।
हाँ बिल्कुल, पर यही वो बारीक रेखा है। क्या ये सच में उसकी आत्मा की प्रशंसा है, या उसके शरीर का, उसकी नाजुक हालत का एक अलग तरह का इस्तेमाल, कला के नाम पर शोषण तो नहीं?
ये सवाल और गहरा हो जाता है जब वो उसे एक आर्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव देता है।
हाँ, वो उसके और एक अन्य पुरुष के नग्न शरीर पर फूल पेंट करके उन्हें फिल्माना चाहता है, प्रकृति और देह का संगम, जैसा वो कहता है। और योंगे, जो अपनी उदासीनता में लगभग बेजान सी है, वो अजीब तरह से सहमत हो जाती है।
लेकिन प्रोजेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते और
विस्फोटक हो जाता है।
हाँ।
वो दूसरे आदमी को हटा देता है, खुद योंगे के साथ शामिल हो जाता है। दोनों के शरीर फूलों से ढके हैं और वो कैमरे के सामने यौन संबंध बनाते हैं। जीजा ऐसे दो अमानवीय फूलों जैसे प्राणियों का आदिम मिलन कहता है, कला की पराकाष्ठा।
लेकिन ये कला
ज्यादा देर टिकती नहीं। योंगे की बहन इन्हें उन्हें इस हालत में देख लेती है। उसका सदमा, उसकी चीखें, वो पूरा मंजर बिखर जाता है।
और नतीजा?
नतीजा, जीजा का करियर, शादी, सब तबाह। और योंगे, जो पहले ही मानसिक रूप से इतनी नाजुक थी, उसे एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है।
ये खंड कला, इच्छा, जुनून और उल्लंघन के कितने खतरनाक उलझे हुए रिश्ते हो सकते हैं, उसे दिखाता है।
बिल्कुल। और वो जो कहता है योंगे से, ये तुम्हारा शरीर है, तुम इसके साथ जो चाहो कर सकती हो, वो कितना खोखला लगता है बाद में।
विडम्बना है।
हाँ, क्योंकि वो खुद ही उसके शरीर को अपनी कला, अपनी इच्छाओं का माध्यम बना रहा था।
सही।
और ये हमें उपन्यास के तीसरे और शायद सबसे दर्दनाक खंड तक ले आता है, जलते हुए पेड़।
हाँ।
अब कथावाचक है योंगे की बड़ी बहन इन्हें,
इन्हा,
जो हमेशा से परिवार की रीढ़ रही है,
जिम्मेदार, सबकी देखभाल करने वाली, सबकी गलतियां सुधारने वाली।
हाँ, वो एक कॉस्मेटिक्स शॉप चलाती है, बेटा है उसका, एक थका देने वाली, कर्तव्य से भरी जिंदगी जीती है।
और योंगे अब कहाँ है?
योंगे अब शहर से दूर पहाड़ों में एक मनोरोग आश्रम में है। उसकी हालत और बिगड़ चुकी है, उसने खाना लगभग पूरी तरह छोड़ दिया है।
छोड़ दिया है, क्यों?
उसका मानना है कि वो पेड़ बन रही है, उसे लगता है उसे खाने की जरूरत नहीं, बस धूप और पानी चाहिए।
पेड़?
हाँ, वो अक्सर कपड़े उतार कर धूप में खड़ी रहती है, कभी कभी हैंड स्टैंड करती है, सोचती है कि उसकी बाएं जड़ें हैं और पैर शाखाएं जो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ रही हैं। ये दृश्य सच में दिल निचोड़ देता है।
ये तो इंसानियत से पूरी तरह पलायन है।
हाँ, उसका चरम रूप। इन्हें नियमित रूप से उससे मिलने जाती हैं। वो बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी और उसकी ये भयानक हालत देखकर जो डर, दुख, शायद थोड़ी झुंझलाहट भी होती है, उसके बीच फंसी हुई है।
और जब अस्पताल वाले उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं,
हाँ, ट्यूब से,
तो इन्हें को उसमें अपने पिता की पुरानी हिंसा की गूंज सुनाई देती है, वही नियंत्रण, वही जबरदस्ती।
क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें का संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं अंदरूनी भी है? अपनी बहन को समाज के हर नियम को तोड़ते देख वो खुद अपने जीवन के समझौतों पर सवाल उठाने लगती है। हाँ बिल्कुल, अपनी बहन की ये हालत देखकर इन्हें का अपना सामान्य जीवन उसे खोखला लगने लगता है। उसकी अपनी सहनशीलता, उसके बलिदान सब बेमानी लगते हैं।
ये सहानुभूति की सीमाओं को भी दिखाता है ना? आप किसी से कितना भी प्यार करें, उसके दुख को कहां तक समझ सकते हैं, खासकर जब वो तर्क की दुनिया से इतना परे चला गया हो।
सही कहा। इसी खंड में एक नर्स का सवाल है जो इन्हें से पूछती है हताशा में। वो पाठक को अंदर तक हिला देता है।
क्या सवाल?
वो पूछती है, क्यों, क्या मरना इतनी बुरी बात है?
ओह, ये तो
भयानक सवाल है, लेकिन ये उपन्यास के मूल द्वंद्व को सामने लाता है। क्या इस क्रूर दमनकारी दुनिया से पूरी तरह मुक्ति पा लेना, चाहे वो मौत के जरिए ही क्यों ना हो, एक तार्किक विकल्प हो सकता है?
और उपन्यास इसका कोई जवाब नहीं देता?
नहीं, कोई जवाब नहीं। अंत भी अस्पष्ट है। इन्हें अपनी बहन को एम्बुलेंस में लेकर दूसरे अस्पताल जा रही हैं। बाहर रात है, घने पेड़ हैं, और इन्हें महसूस करती है कि हकीकत पर उसकी अपनी पकड़ भी ढीली पड़ रही है, जैसे वो भी अपनी बहन के अंधेरे पेड़ बनते अस्तित्व में खींची जा रही हो।
ये अस्पष्टता ही शायद उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है।
बिल्कुल।
तो अगर हम किरदारों को संक्षेप में देखें, योंग हे वो निष्क्रिय पत्नी से मूक विद्रोही बनी और फिर मानवीयता से पेड़ बनने की चाहत तक पहुंची। वो केंद्र में है, पर उसकी आवाज दूसरों के नजरिए से छनकर आती है। आपकी नजर में उसका ये रूपांतरण क्या दिखाता है?
मेरे लिए ये समाज के दबाव और निजी आघात का एक चरम, बहुत ही दुखद परिणाम है। एक ऐसी आत्मा जो हिंसा से इतनी तंग आ गई कि उसने इंसान बने रहने से ही इनकार कर दिया।
और पति श्री चोंग,
वो उस सामान्य पितृसत्ता का प्रतीक है जो किसी भी विचलन को, किसी भी अलग रास्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जीजा, वो कला और जुनून की आड़ में शोषण का रास्ता अपनाता है। योंगहे का दुख उसके लिए बस एक सब्जेक्ट बन जाता है।
हाँ, और अंत में इन्हें जिम्मेदार बहन जो अपनी बहन की त्रासदी की गवाह बनकर अपने ही जीवन के अर्थ पर सवाल उठाने लगती है। वो उस बोझ का प्रतिनिधित्व करती है जो अक्सर महिलाओं को उठाना पड़ता है, परिवार संभालने का, सबको जोड़े रखने का।
बिल्कुल। अब अगर मुख्य विषयों पर आएं, तो सबसे पहले तो शारीरिक स्वायत्तता बनाम पितृसत्तात्मक नियंत्रण। योंगहे का मांस छोड़ना अपने शरीर पर, अपनी इच्छा पर नियंत्रण का पहला कदम था।
हाँ, और उपन्यास दिखाता है कि कैसे परिवार और समाज के पुरुष, पति, पिता, यहाँ तक कि एक हद तक जीजा भी इस नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे ठीक करने की, वापस सामान्य बनाने की।
उसके चुनाव को पागलपन करार दे दिया जाता है। ये कितना आम है ना?
बहुत आम। दूसरा बड़ा विषय है हिंसा और आघात। योंगहे के सपने क्रूरता से भरे हैं। पिता शारीरिक हिंसा करते हैं, पति का नियंत्रण मानसिक हिंसा है, जीजा का कृत्य वो भी एक तरह की हिंसा है। हिंसा जैसे इस कहानी की हवा में ही घुली हुई है।
और उसका पेड़ बनना शायद इसी हिंसा से बचने की एक निष्क्रिय अहिंसक अस्तित्व पाने की अंतिम हताश कोशिश है।
हाँ, और यहीं जुड़ता है विवेक और पागलपन के बीच की धुंधली रेखा का सवाल। समाज योंगहे को पागल कहता है, पर क्या एक क्रूर दमनकारी दुनिया को पूरी तरह नकार देना वाकई पागलपन है?
या ये उस दुनिया का एक तर्कसंगत, भले ही चरम जवाब है। हांगकांग हमें मजबूर करती हैं कि हम सामान्य की अपनी परिभाषा पर सवाल उठाएं।
चौथा विषय जो दूसरे खंड में खास तौर पर उभरता है वो है कला, इच्छा और उल्लंघन का रिश्ता। जीजा योंग है कि दुख में सुंदरता देखता है, उसे कला में ढालना चाहता है, पर इस प्रक्रिया में उसका शोषण करता है।
ये कलाकार और उसके म्यूज के बीच के शक्ति संतुलन और नैतिक जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कला के नाम पर सब जायज है?
बिल्कुल नहीं। और आखिर में सहानुभूति और समझ की सीमाएं। कहानी योंगहे के सबसे करीबी लोगों द्वारा सुनाई जाती है, पति, जीजा, बहन, फिर भी वो अंत तक एक पहेली बनी रहती है।
हर कोई उसे अपने नजरिए से देखता है, अपनी उम्मीदें, अपने डर उस पर थोपता है। कोई उसे विद्रोही मानता है, कोई देवी, कोई बोझ।
हाँ, ये इंसान के अकेलेपन को दिखाता है, और ये कि हम दूसरों को पूरी तरह कभी समझ ही नहीं सकते शायद।
उपन्यास की शैली की बात करें, आपने त्रिपिटक संरचना का जिक्र किया था, तीन खंड, तीन नरेटर। ये जानबूझकर योंगहे को सीधी आवाज नहीं देता।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हाशिए पर पड़े लोगों को अक्सर दूसरों के शब्दों से परिभाषित किया जाता है, उनकी अपनी कहानी दब जाती है।
प्रतीकात्मक भी बहुत मजबूत है। मांस इच्छा, हिंसा परंपरा का प्रतीक, पेड़ पौधे फूल निष्क्रियता, शांति अहिंसा जिसकी योंगे चाहत रखती हैं।
मंगोलियाई निशान उसकी खासियत, उसकी आदिम प्रकृति जिसे जीजा अपनी वासना से रंग देता है, और सपने वो अवचेतन की गहरे घाव और संघर्षों को सामने लाते हैं।
और हांगकांग की लिखने की शैली, डिबोरा स्मिथ के अनुवाद ने भी जिसे बखूबी पकड़ा है वो कमाल की है। एकदम शांत सपाट, लगभग जैसे कोई क्लिनिकल रिपोर्ट हो।
हाँ, जैसे कोई डॉक्टर बिना किसी भावना के लक्षण बता रहा हो, लेकिन यही शांत लहजा कहानी के भयानक हिंसक जज्बाती घटनाओं के साथ मिलकर एक जबरदस्त तनाव पैदा करता है। वो शांत तूफान वाली बात है।
भाषा बहुत शारीरिक है ना, देह के अनुभवों पर टिकी है, भूख दर्द इच्छा सड़न।
बिल्कुल, सच कहूं तो ये किताब पढ़ना कोई आसान या सुखद अनुभव नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेचैन करती है, परेशान करती है, लेकिन आप इसे भूल नहीं पाते। पाठक खुद को उन नैरेटरों के अधूरे, अक्सर स्वार्थी नजरियों में फंसावा पाता है।
हाँ, वो नैरेटर भी तो योंगे की तरह ही खोए हुए से लगते हैं। आप योंगे को पूरी तरह समझ नहीं पाते, शायद समझ सकते भी नहीं, लेकिन उसके दर्द की गहराई, उसकी घुटन महसूस करते हैं।
कहानी डर, दया, घृणा और उसके इंसानियत से भागने के प्रति एक अजीब सी विचलित करने वाली समझ जगाती है।
अंत में जो रह जाता है वो है अस्पष्टता और कुछ चुभते हुए सवाल। योंगे कौन थी? शिकार, विद्रोही, संत या सिर्फ एक बीमार स्त्री?
शायद इन सब की एक दुखद मिलावट। ये किताब हमें मजबूर करती है कि हम सामाजिक नियंत्रण के महीन धागों को देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हिंसा को पहचानें,
और इंसान के मन की भयावह नाजुकी का सामना करें।
ये हमारी सामान्य जिंदगी, हमारी सहनशीलता, हमारे अपने समझौतों पर सवाल उठाने को उकसाती है।
हाँ, तो अंत में ये कहानी हमें उन सामाजिक दबावों पर सोचने को मजबूर करती है जिनका हम सब सामना करते हैं, और उन मूक तरीकों पर जिनसे इंसान या तो विद्रोह करता है या फिर टूट जाता है।
और ये सवाल हमेशा हमारे साथ रहता है कि हम जिसे सामान्य कहते हैं वो आखिर है क्या, और उस तयशुदा रास्ते से अलग चलने की कीमत क्या होती है,
क्या चुकानी पड़ती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।